मुख्य समाचारों में, फेडरल सरकार ने न्यूनतम वेतन में वृद्धि का मापदंड निर्दिष्ट नहीं करने का किया बचाव। मुरुगुप्पन परिवार को आधिकारिक तौर पर अप्रवासन हिरासत से रिहा किया जाएगा और फेडरल संसद में स्वदेशी आवाज की संवैधानिक मान्यता के समर्थन के लिए धार्मिक समूह हुए एकजुट। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। फेडरल सरकार उन आंकड़ों को चिन्हित नहीं करने का बचाव कर रही है जिसके द्वारा न्यूनतम वेतन में वृद्धि होनी चाहिए। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ी फेयरवर्क कमीशन को न्यूनतम वेतन में वृद्धि की वकालत करने वाले एक पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। वर्तमान मुद्रास्फीति के स्तर के साथ वास्तविक वेतन वृद्धि देने के लिए इसे न्यूनतम लगभग 5% बढ़ाना होगा। लेकिन उप प्रधानमंत्री रिचर्ड माल्स का कहना है कि पत्र में किसी भी संख्या को नहीं निर्दिष्ट करना, ये अभी भी लेबर पार्टियों की चुनावी प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
The focus of the submission is what we've argued throughout the election campaign, what Anthony Albanese has been making clear, and that is that those on the minimum wage should not be left behind. And so the focus of the submission that we will be making to the national wage case is that those who are on the minimum wage should not receive a real wage cut.
लेबर सरकार ने पुष्टि की है कि वो शरण चाहने वाले एक तमिल परिवार को क्वींसलैंड के बिलिबुलु शहर में घर लौटने की अनुमति दे रही है। अंतरिम गृह मामलों के मंत्री जिम चार्मस ने एक बयान जारी करके कहा है कि उन्होंने मुरुगप्पन परिवार के मामले में प्रवासन अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है। उनका कहना है कि नादेश, प्रिया और उनकी दो बेटियां जो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुई थीं, अब ब्रिजिंग वीजा पर रहेंगे और वो ऑस्ट्रेलियन कानून के अनुसार अपने इमिग्रेशन पर कार्यवाही करेंगे। साथ ही मंत्री का ये भी कहना है कि सरकार ऑपरेशन सॉवरेन बॉर्डर्स के लिए प्रतिबद्ध है और सीमा सुरक्षा अधिकारी ऑस्ट्रेलियन जल में प्रवेश करने वाली बोट्स को रोकेंगे और वापस करेंगे। हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, नेशनल सिख काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन नेशनल इमाम्स काउंसिल सहित ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष 9 धार्मिक संगठनों ने उलुरु स्टेटमेंट फ्रॉम द हार्ट के लिए अपना समर्थन दिया है। धार्मिक नेताओं ने स्वदेशी नेताओं द्वारा ऐतिहासिक उलुरु स्टेटमेंट जारी किए जाने के 5 साल पूरे होने पर अपना समर्थन दिखाते हुए एक समारोह में भाग लिया और एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। ये संविधान में संसद के लिए एक स्वदेशी आवाज को संरक्षित करने और सत्य कहने और संधि बनाने की प्रक्रिया का आह्वान करता है। मैक्वेरी विश्वविद्यालय से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ स्कॉलर डॉ. शिरीन मॉरिस का कहना है कि बढ़ते सामुदायिक समर्थन से संविधान को बदलने के लिए एक सफल जनमत संग्रह के माध्यम से स्वदेशी मान्यता प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है।
I think we absolutely can. You know, the polling indicates consistently high support amongst Australians for this reform of voice in the Constitution. What today demonstrates is that civil society, religious groups are willing to step up. They're transcending their differences. They're uniting behind this cause in a really unprecedented way. So I think this has got a fantastic chance at succeeding, provided we all do the hard work.
क्वींसलैंड ने स्वदेशी दिग्गजों को समर्पित एक युद्ध स्मारक का अनावरण करके और राज्य के पहले इंडिजिनस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस का नामकरण करके नेशनल रिकन्सिलिएशन वीक की शुरुआत की। लिंकन क्रॉली क्यूसी नॉर्दर्न टेरिटरी के वारामुंगा लोगों के वंशज हैं और उत्तरी क्वींसलैंड में पले बड़े हैं। वर्तमान में वो क्वींसलैंड बार एसोसिएशन की स्वदेशी बैरिस्टर समिति के अध्यक्ष हैं और इससे पहले सिडनी और ब्रिस्बेन में डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन के लिए क्राउन प्रोसिक्यूटर थे। युद्ध स्मारक आदिवासी और टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर सैन्य कर्मियों के लिए राज्य का पहला समर्पित स्थल है। विदेश मंत्री पेनी वोंग का कहना है कि ये एक महज संयोग है कि उनकी पैसिफिक यात्रा उसी समय हुई है जब चीनी विदेश मंत्री की यात्रा हुई थी। पेनी वोंग फिजी में हैं, जहां वो पैसिफिक आइलैंड लीडर्स फोरम में भाग ले रही हैं और लेबर सरकार की ओर से जलवायु परिवर्तन और इस क्षेत्र पर नई दिशा का संकल्प कर रही हैं। ये तब है जब चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने प्रशांत द्वीप देशों के 8 देशों के दौरे की शुरुआत की और एक लीक मसौदा दस्तावेज दिखा रहा है कि वो सोलोमन द्वीप की ही तरह उन दूसरे 10 देशों के साथ सुरक्षा सौदा करने की उम्मीद कर रहे हैं। फिजी की राजधानी सुवा से बोलते हुए सुश्री वांग कहती हैं कि जैसे ही वो विदेश मंत्री बनी, वो इस क्षेत्र में आने की इच्छुक थीं।
We did a lot of work on Pacific policy, and we thought when we did it we'd have an announcement that, you know, it would probably get picked up here and in the Pacific press, but it became quite a big part of our foreign policy during the election. We understand how important this is, and we understand that Australia has more to do, and we wanted to put out there the things that we wanted to do.
विक्टोरिया में बीती रात 000 इमरजेंसी कॉल सिस्टम में तकनीकी खराबी से दर्जनों मरीज विक्टोरियन एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे। डिस्पैच सिस्टम में तकनीकी खराबी आने पर कम से कम 75 मरीज प्रभावित हुए और कोड रेड लगाया गया था। विक्टोरियन सरकार ने पिछले सप्ताह घोषणा की थी कि राज्य की कई वर्षों से संकटग्रस्त 000 कॉल सिस्टम को ओवरहॉल और रीब्रांड किया जाएगा। एम्बुलेंस यूनियन के डैनी हिल ने मेलबर्न रेडियो 3AW को बताया है कि सिस्टम न केवल सेवा की मांग में वृद्धि का सामना कर रहा है, बल्कि संसाधनों के सही उपयोग न होने का भी सामना कर रहा है।
When that crashes, they literally have to go to an old manual pen and paper type system to allocate the crews, and they rely on the crews actually manually calling in over the radio to say, we've just cleared at the Alfred Hospital, okay, so now we know you're the closest crew to this case. But it's inefficient. It means that crews are often not the nearest crew that might be dispatched to a case. And, you know, when we're busy, as we were last night, you need every available minute and second to be saved.
भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री और अमरीकी अनुवादक डीजी रॉकवेल ने 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। इस जोड़ी ने उपन्यास टूम ऑफ सैंड के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता। उपन्यास में एक सीमा पार करती 80 वर्षीय नायिका है और जजेस द्वारा इसे असाधारण रूप से आकर्षक और मजाकिया के रूप में वर्णित किया गया। पुस्तक मूल रूप से हिंदी में लिखी गई थी और अंतर्राष्ट्रीय बुकर जीतने वाली भारतीय भाषा की पहली पुस्तक है। विजेता लेखिका गीतांजलि श्री का कहना है कि वो बहुत खुश हैं।
दिस इज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू बट व्हाट अ नाइस वन एंड आई एम स्टिल रीलिंग। आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ द बुकर एंड नेवर थॉट आई कुड। व्हाट अ ह्यूज रिकग्निशन। आई एम अमेज्ड, डिलाइटेड, ऑनर्ड and humbled.
International Booker Prize अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा से अनुवादित पुस्तक को दिया जाता है और ये Booker Prize से अलग है। व्हाइट हाउस ने नेशनल राइफल्स एसोसिएशन को अमेरिका में बंदूक हिंसा को रोकने में रास्ते की अड़चन माना है। टेक्सास के एक छोटे से शहर के प्राथमिक स्कूल में नवीनतम सामूहिक हत्या के कुछ ही दिनों के बाद NRA ह्यूस्टन में अपना वार्षिक सम्मेलन शुरू कर रहा है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अन्य प्रमुख रिपब्लिकन इस 3 दिवसीय कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरिन जीन पियरे ने कांग्रेस से सार्थक बंदूक सुधार पारित करने का आह्वान करते हुए कहा कि ये शर्मनाक है कि कानूनों को बदलने के हर प्रयास के रास्ते में NRA कैसे खड़ा हुआ है।
It's not about the convention. What is inappropriate is that the leadership of the National Rifle Association has proven time and time again that they are contributing to the problem of gun violence, not trying to solve it. They represent the interests of the gun industry, the gun manufacturers, who are marketing weapons of war to young adults.
और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का $1 अमेरिका के 71 सेंट और भारत के 55 रुपए 41 पैसे के बराबर है। खेल समाचारों में AFL में कॉलिंगवुड के डिफेंडर जॉर्डन रॉगहेड ने तत्काल प्रभाव से अपने रिटायरमेंट की घोषणा की है। हाल ही में उनकी उंगली की सर्जरी हुई है और उन्हें कंधे की समस्या भी हुई है। रॉगहेट ने 9 वर्षों में पश्चिमी बुलडॉग के साथ 138 गेम खेले और 2018 सीजन के बाद कॉलिंगवुड चले गए और उनके लिए 63 मैच खेले। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी शनिवार को पर्थ में मुख्यतः धूप रहेगी। अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 11 डिग्री। एडिलेड में बौछारें, अधिकतम तापमान 17 डिग्री, न्यूनतम 10 डिग्री। मेलबर्न में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 16 डिग्री, न्यूनतम 8 डिग्री। होबार्ट में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 15 डिग्री, न्यूनतम 5 डिग्री। कैनबरा में एक दो बौछारें, अधिकतम तापमान 16 डिग्री, न्यूनतम 8 डिग्री। सिडनी में एक दो बौछारें, अधिकतम तापमान 21 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री। ब्रिस्बेन में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 25 डिग्री, न्यूनतम 15 डिग्री। और डार्विन में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।